कुर्बानी ना पाने वाले मुखसर के लिए आसानी। अब ये एक सवाल है, देखिए यहाँ रहते हुए आप में से हर एक अपनी अपनी कुर्बानी नहीं करता ना, करना चाहे तो कर सकती है, औरत भी मर्द भी बच्चे भी बड़े, लेकिन अमूमन एक घर के सरबराह की तरफ से कुर्बानी सबके लिए होती है। हज में शर्त क्या है? आपकी अपनी कुर्बानी लाजमी है साथ, यानी हज के अरकान में से एक रुकन कुर्बानी करना है, नाहर यौमे नाहर 10 ज़िलहज को जो करते हैं। अब आपके पास पैसे ही नहीं है, आपका वाउचर चोरी हो गया, आप कुर्बानी वहाँ कर ही नहीं पाए, तो क्या करना है? उसके लिए कुरान की आयत है, उसी में ये बात है, कुर्बानी ना पाने वाले रोके हुए शख्स के लिए भी आसानी है, एक कॉल के मुताबिक 10 रोज़े रखकर और दूसरे कॉल के मुताबिक रोज़े रखे बगैर ही वो हलाल हो जाता है। 3 रोज़े वहाँ रखने होते हैं, 7 वापस आके रखने होते हैं, ये आप कुरान की आयत में पढ़ सकते हैं। तो क्या पता चला कि अगर बिलफर्ज आप में से कोई कुर्बानी नहीं कर सकता, कोई रीज़न हो सकती है ना, वहाँ जाकर कोई इशू बन गया, तो फिर उसका कफ़ारा इन रोज़ों की सूरत में होता है। ये पूरा अल्लाह ताला ने इसकी डिटेल दी हुई है आप कुरान में। जी अब आप बात करें, कुछ सवाल पूछे। वो कुर्बानी भी फिर उसी के नाम की होगी, नहीं अपनी कुर्बानी लाजमी नहीं। अगर इनका सवाल ये है कि अगर ये हज बदल कर रही हैं, हो चुके कर चुके हैं, तो कुर्बानी भी फिर उसी की तरफ से होगी, ठीक है? आपके ऊपर फ़र्ज़ वैसे भी नहीं है कुर्बानी, आप वहाँ जाकर जो कुर्बानी करेंगे वो उसी की तरफ से होगी जिसकी तरफ से आप हज कर रहे हैं, ठीक है? सवाब दोनों को मिलेगा, सवाब दोनों को मिलेगा। जी आप अलग कुर्बानी का कोई ताल्लुक नहीं इससे, इनका सवाल है कि जो हज की कुर्बानी के बगैर जो अलग यहाँ सारे अपनी करते हैं वो भी करनी होगी, वो तो वैसे भी फ़र्ज़ नहीं है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यानी इनका सवाल फिर इस तरह से बनता है कि कोई हज पे जाए तो एक से ज़्यादा कुर्बानी कर दे, कर दे जितनी मर्ज़ी करें, वो तो आपकी मर्ज़ी है ना, मतलब करना चाहे तो आप कर ले। मैंने नहीं कभी ये पढ़ा कि कोई एक की बजाय दो कुर्बानियाँ करें। 11वां इशू क्या है? कुर्बानी ना पाने वाले के लिए आसानी क्या है? कि वो कुर्बानी ना पाने वाले रोके हुए शख्स के लिए आसानी है, एक कॉल के मुताबिक 10 रोज़े और दूसरे में यह है कि वो इसके बगैर भी हलाल है। मसला नंबर 12 देखिए कि मुहरिम का गुसल करना। अब ये भी सवाल आपसे बहुत लोग पूछेंगे और आपके भी जहन में आएगा, गर्मी शदीद होती है, आपने तो वैसे इधर से नॉर्वे से जाना है तो आपको लगेगी भी बहुत सारी, तो कल जो आपको थोड़ी सी टिप्स दी थी उस पर अमल करें, कॉटन के कपड़े बनाएं और अपनी तहारत का बहुत ख्याल रखें, अपने जिस्म को हर मुमकिना गलास्तों से पाक करें, फालतू बाल पहले से साफ़ करके जाएं, यानी हर वो चीज़ जिससे स्मेल आती है या गंदगी का होता है उसको दूर कर दें, ठीक है? अब क्या करें, मुहरिम जब चाहे गुसल कर सकता है, इस बारे में सरीह और साबित शुदा सही हदीस के बाद किसी के लिए इसे मकरूह कहने की गुंजाइश नहीं। कुछ किताबों में आप पढ़ेंगे कि जी मकरूह है गुसल करना, ऐसी बात नहीं है। आप खुद सोचें, हमारा दीन जो तहारत का दीन है, और दीन तहुरु शत्रुल ईमान, आधा दीन सिर्फ तहारत को कहा गया, अब वहाँ 10 लाख लोग हैं, इतनी कुर्बत है, तवाफ में भी, मिना में, मुजदलफा में, हर जगह रश है, और गुसल ना किया तो पसीनों के भभोके क्या होंगे, मैं तो सोच के वॉमिट हो जाए। आप गुसल करें वहाँ, 5 दिन आपने अहराम की हालत में रहना है, अगर जितने भी दिन 4 या 5 दिन जितने भी 3 दिन रहे पूरा सही शऊर के साथ गुसल करें, कोई हरज नहीं। उस गुसल में अगर बाल धोते वक्त खुद से कोई बाल गिर भी गया कोई कफारा नहीं है, खुद नहीं तोड़ना, खुद गिर गया तो कोई हरज की बात नहीं है। फिर इसी तरह मुहरम का सर में खुजली करना, मुहरम अपने सर में खुजली कर सकता है, इससे अगर कोई बाल गिर जाए तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि आपने जान के नहीं तोड़ा, ठीक है? अब ये भी एक इशू बन गया, लोग तो बेचारे इससे स्टैचू बने होते हैं, क्या क्या मसले उठते हैं। फिर अहराम को धोना या तब्दील करना, अहराम को धोने और तब्दील करने की कोई ममानियत साबित नहीं है, मर्दों के पास एक से ज़्यादा चादरें, बल्कि आप कम से कम दो दो चादरें साथ लेकर जाएं क्योंकि जब वहाँ 2-3 दिन पहनना पड़ता है, कम से कम एक चादर एक्स्ट्रा होनी चाहिए, अगर ऊपर की शोल्डर की ना भी बदलें तो नीचे वाली चादर भी तो तहमत की तरह की होती है, मर्द वो भी बदल सकते हैं, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। आप अपने कपड़े बदल सकती हैं, 2 अबाए ऐसे ज़रूर रखें, एक गंदा हो जाए तो दूसरा धो के पहन ले, तो आप चेंज करें, बल्कि आप अपने साथ वालों के लिए सहूलत का ज़रिया बने, साफ़ सुथरे रहें, आप खुद भी इजी होंगे, वरना आपको देखकर दूसरों को वोमिट आ रही होगी कि इसने इतना गंदा अबाया पहना हुआ है, और स्पेशली जब रबड़ के अबाए हों और जर्सी टाइप के और ऊपर पसीना, और फिर कभी गर्मी में कभी सर्दी में अजीब सी वो कैफियत बन जाती है। फिर इसी तरह से मुहरम का साए तले आना, अच्छा कई लोग ये भी कहते हैं जी साए तले नहीं आना, मतलब छत के नीचे नहीं आना। तो सुन लीजिए कि मुहर्रम के लिए सर के साथ किसी चीज़ को चिपकाना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता किसी चीज़ के साए तले आने, बैठने या क्याम करने में कोई मज़ायका नहीं। जैसे मर्द टोपी नहीं पहनते ना अहराम की हालत में, अब सर के ऊपर कपड़ा कोई बांध के लपेट दें वो नहीं है। लेकिन अब आप देखें ना, छतों के नीचे से गुजरना, हरम में सहन तक आने तक कितने बरामदे गुजरने पड़ते हैं, तो क्या आप छत के नीचे नहीं आएंगे? आ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लाइल्मी में कपड़े पहनने और खुशबू लगाने पर दम का वाजिब ना होना, यानी कोई आराम की हालत में था, इल्म नहीं था, कपड़े पहन लिए, पूरे सही सिले हुए कपड़े पहन लिए, खुशबू लगा ली, लगानी नहीं चाहिए लेकिन लगा ली है, पता नहीं था, इल्म नहीं था, कोई हर्ज नहीं है, उसका दम नहीं है। लाइल्मी में पहने हुए कपड़े सर की जानिब से उतारना, लाइल्मी से सिले हुए कपड़े पहनने और खुशबू इस्तेमाल करने से अहराम पर कुछ असर ना होगा, अलबत्ता इल्म होते ही कपड़े उतार दे और खुशबू अच्छी तरह धो दे। कपड़े उतारने की गरज से इन्हें फाड़ने की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता सर की जानिब से ही उतार ले। इन सब कामों की वजह से इन पर दम भी वाजिब नहीं होगा। यानी अगर कोई कपड़े पहन ही लेता, मतलब गुसल किया तो एकदम अपना कोई कोई कुर्ता पहन लिया, नहीं याद रहा, बाद में बाहर आकर चादर बदलनी चाहिए, तो उसका कोई दम नहीं है। बवक्ते ज़रूरत मुहर्रम का हथियार बंद होना, ज़रूरत के वक्त मुहर्रम के लिए हथियार बंद होना जायज़ है। क्या मतलब? सात हथियार रख सकते हैं। सहाबा किराम जब मदीना से मक्का आए थे तो उनके पास अपने बचाव वाले हथियार थे, जैसे तीर है या कोई बर्छी ऐसी है। रास्ते में आपको पता है मौजी जानवर भी होते थे, कीड़े सांप भी हैं, उनको मारने के लिए कोई ऐसी चीज़ रखना चाहे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। मोहरिम के लिए आंखों के इलाज की इजाज़त है। मोहरिम की आंखों के दुखने पर खुशबू और जीनत से खाली इलाज करना बिला इख्तलाफ जायज़ है। अल्लाह ना करे आप में से किसी की गर्मी की वजह से आंखें ख़राब हो जाती हैं, कुछ भी है, या यहाँ आप कोई आई ड्रॉप्स डालते थे, अब साथ लेके जाएं, आप अहराम की हालत में डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं होगा उसमें इंशाल्लाह। बवक्त ज़रूरत खुशबू पर मुश्तमिल इलाज की इजाज़त है, लेकिन इस सूरत में फ़दिया देना होगा। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं या साबुन है जिसमें खुशबू है तो इस्तेमाल कर लें, लेकिन फिर उसका फ़दिया दे दें। ज़रूरत के खालियाज खुशबू सुरमा बिला फ़दिया इस्तेमाल करने के जवाज़ पर इत्तफाक़ है, यानी आप आंखों में सुरमा लगा सकते हैं अहराम की हालत में। जीनत की गरज से हालत अहराम में सुरमे का इस्तेमाल नापसंदीदा है। जीनत के हसूल की जस्तजू हालत अहराम से मुनासबत नहीं रखती, यानी वहाँ कोई अपनी खूबसूरती के लिए तो ये कुछ करता भी नहीं है ना। यानी एक औरत है, वहाँ मेकअप कर ले, आईलाइनर लगा ले या चेहरे पे कुछ चीज़ें लगाए, तो बात समझ ही नहीं आती ना, यानी खूबसूरती के लिए नहीं लगाना। लेकिन अरब लोग आपको तक आंखों के इलाज सुरमे से करते थे, आंखें दुख रही हैं, सुरमा लगाना पड़े कोई हर्ज नहीं है। जी जी बिल्कुल ले सकते हो, सांस भी तो लेने हैं ना, इनहेलर्स होता है तो वो ले सकते हैं, बल्कि लेना चाहिए, पास रखना चाहिए। कभी कभी रश में फंसने से डर हो सकता है, ख़तरा है कि कहीं फंस गए तो क्या होगा, तो अपने पास रखिए बिल्कुल इंशाल्लाह। हालत अहराम में पछना लगवाना, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत अहराम में पछना लगवाया। ज़ख़म और फोड़े चीरने, रग काटने, दाढ़ निकालने और मौजूदा आमाले जराही के जवाज़ की इसी से दलील ली गई है। खुशबू के इस्तेमाल और बालों के मोड़ने या तराशे बगैर इन सब कामों पर फ़दिया लाजिम नहीं होगा। ये पछने लगाने क्या होते हैं, जिसको आज आप यहाँ कपिंग कप्स लगाना और उर्दू में क्या कहते हैं, हिजामा करना, ठीक है? तो हिजामा वगैरह ये करना करवाना किया जा सकता है, क्योंकि ये एक इलाज है। इसी से फिर दलील है ना कि इंजेक्शन लग सकता है आज भी, अल्लाह ना करे कोई सिक हो जाए तो उसको ड्रिप लगवाई जा सकती है। पछना लगवाते वक्त बाल मंडवाने की सूरत में जमहूर उलमा के नज़दीक दम वाजिब है। कोई सर में पछने लगवाता है तो उसको थोड़े से बाल शेव करने पड़ते हैं, तो फिर दम देना पड़ेगा। बहालत मजबूरी सर मुंडाने की इजाज़त है। एक सहाबी के सर में जुएं पड़ गई थी, तो उसको फिर इतनी ज़्यादा जुएं थी कि फिर उनको बाल काटने पड़े थे, तो जब बाल कटवा दिए सारे तो फिर उसका दम दिया गया था। वही वाक्या इधर है। सर मुंडवाने के फ़दिये में आसानी, मुहर्रम को मजबूरी की हालत में सर मुंडाने की इजाज़त है, और इसकी वजह से लाजिम आने वाले फ़दिये में मुहर्रम को इख्तियार है कि 3 रोज़े रखे या 6 मिसकिनों को खाना खिलाए या 1 बकरी ज़िबा करें। ये बिल्कुल कुरान की आयत का तर्जुमा है। हालत अहराम में मुजी जानवरों को मारने का इख्तियार है। मुजी जानवर कौन कौन से होते हैं? सांप है, बिच्छू है, कौवा है, चील है, इनको मारा जा सकता है। हालत अहराम में आबी शिकार और समंदरी खाने का हलाल होना, मुहर्रम के लिए आबी शिकार और समंदर की बेशिकार हाथ आने वाली चीज़ें हलाल हैं। इनका बेचना और ख़रीदना भी इसके लिए जायज़ है, और इन बातों पर अहले इल्म का इजमा है। मोहरिम के तआवुन के बगैर हलाल शख्स के किए हुए बर्री शिकार का खाना। हलाल शख्स कौन होता है जो है एहराम की हालत में नहीं है? इसमें वो वाकया सहाबा का कि एक सहाबी जो थे उन्होंने एहराम नहीं था बांधा हुआ, बाकी सारे एहराम की हालत में थे, तो वहाँ बैठे तो वहाँ एक जानवर आ गया जिसको बड़े शौक से लोग खाते थे, वो आप जूती सी रहे थे जो एहराम की हालत में, तो उन्होंने वो जानवर देख लिया, ये नहीं देख रहे, तो वो जिसको पंजाबी में कहते हैं खंगूरे मारे कोई देख ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे, तो अब वो खुद कह भी नहीं सकते थे कि तुम एहराम इसको शिकार कर लो। अचानक उनकी अपनी नजर पड़ी तो फौरन उठ के भागे, क्योंकि देखिए उनके लिए गोश्त हासिल करने का एक ही तरीका था और वो शिकार था। जूं ही वो चढ़े तो अपना चाबुक लेना भूल गए, तो वहां खड़े होकर लोगों को कहते हैं मुझे चाबुक देना, तो कोई साहब उनकी बात ही नहीं सुन रहा। आखिर वो खुद उतरे, अपना वो हथियार लिया, वहां गए, वो जानवर शिकार किया, फिर जिबा किया, फिर उसको पकाया, जब पका कर इनको पेश किया तो सबने खा लिया। अब बाद में डाउट आ गया कि लो तुमने तो मेरी मदद तो की नहीं है शिकार करने में, तो अब खा क्यों रहे हो? तो अल्लाह के नबी के पास जब ये मसला पहुंचा तो आपने कहा तुम खा सकते हो, तो गोश्त खा सकते हैं लेकिन शिकार नहीं कर सकते। और सहाबा में कैसी इताअत होती थी, जरा सोचिए, हम तो पता नहीं क्या कुछ कर चुके होते ऐसे वक्तों में। बहरहाल, हालत एहराम में बड़ी शिकार करने की सजा में आसानियाँ, ऐसे शख्स के लिए दर्जा से तीन आसानियाँ। नंबर एक, इरादे से यानी कसदन ऐसा करने वाले का एहराम बातिल नहीं होता बल्कि सिर्फ सजा पर इक्तफा किया गया, यानी को कर ही ले शिकार तो फिर भी उसको सजा तो वो दी जाएगी जो कुरान पाक में, लेकिन एहराम पे असर नहीं पड़ेगा। सजा में इख्तियार है कि वो जानवर की कुर्बानी करे या मिस्कीनों को खाना खिलाए या रोजे रखे। गलती और भूल कर शिकार करने से ना तो इसका एहराम मुतासिर होगा और ना ही इस पर फिदिया लाजिम आएगा। फौत होने वाले मोहरिम के बकिया माल की अदायगी की पाबंदी ना होना, ये बड़ा अहम इशू है। अल्लाह ना करे किसी की जान चली जाती है, और आप देखते हैं हर नमाज में जनाजा। ये मैं आपको इंशाल्लाह इन अगले दिनों में एक दिन में यहाँ नमाज जनाजा के मसाइल थोड़े से सिखाऊंगी, आप यकीन करें कि दुआएं देंगे। आप सबके पास जो हज का एक मौका है, उमरे का, वो तो है, हर नमाज में दो तीन जनाजे भी पढ़ते हैं, और वो क्या हुक्म है, हो सकता है आप में से किसी ने कभी ना पढ़ा हो, हमारे कल्चर में नहीं है। ठीक है, औरत कब्रिस्तान नहीं जाती, लेकिन औरत नमाज जनाजा पढ़ सकती है। अगर इस मस्जिद में किसी का जनाजा हो तो जिस तरह मर्दों को पढ़ने का सवाब है, औरतों को भी सवाब है, एक किरात अजर मिलता है उसके ऊपर। तो एक दिन आपको उसके मसाइल बता दूंगी, फिर उसके बाद आपका दिल करे तो आप पढ़े, दिल ना करे ना पढ़े। मैं तो जरूर पढ़ती हूँ, फर्ज पढ़ने के बाद बैठी रहती हूँ, सुन्नतें नहीं शुरू करती, क्योंकि उसके बाद वो फिर नमाज जनाजा अनाउंस करते हैं, वो पढ़ कर फिर उसके बाद हर सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, तो ये एक मुफ्त की नेकी है। मैं अभी उम्रे के सफर में थे हम लोग, तो मेरा ख्याल है कि हमारा 16 दिन का था, तो मैं गिन रही थी, बता रही थी कि जिस दिन से आए हैं आज तक शायद एक या दो नमाज में कोई जनाजा अनाउंस नहीं हुआ। तो अगर आप 16 को 5 से ज़र्ब दें तो इतने जनाजे, और जिसमें एक नमाज में एक से ज्यादा जनाजे भी होते हैं, वो बोलते हैं मर्द का है, औरत का है, बच्चे का है, ज्यादा का है। तो मैं सोच रही थी कि ये वो नेकी है जो हमें नहीं पता। एक किरात, किरात कहते हैं बड़ा सा पहाड़ होता है, इतनी नेकियों का अजर है, और लोग वैसे ही रह जाते, बातें कर रहे होते हैं। यहाँ तो अगर आपको मौका मिला तो ज़रूर पढ़िएगा इंशाल्लाह, सबका पढ़ सकते हैं, औरत मर्द का भी पढ़ सकती है, मर्द औरत का भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से हालत एहराम में फौत होने वाले शख्स के पसमानदगान को इसके हज और उम्रे के बकिया माल अदा करने का पाबंद नहीं किया गया। ये भी बड़ी ऐसे बात है, हमारी एक सिस्टर हैं तो उनके फैमिली के कुछ लोग हज पे गए थे, सारा हज कर लिया, और वो जो भाई थे वो कुछ दिन पहले के जा चुके थे, बाकी सारी फैमिली बिल्कुल एक आधा दिन पहले पहुंची। ये कहते हैं हम आके पहुंचे हैं जल्दी से, एहराम बांध कर हम चले गए अरफात की तरफ, और वहां से आते ही फौरन सबको ख्वाहिश होती है ना कि उम्रा कर लिया जाए ताकि एहराम की पाबंदी से निकले। तो उन्हीं में से एक भाई अपने सारे रिचुअल पूरे करके तो वहां से निकल रहे थे सफा से मरवा की तरफ या वहां से बाहर, तो गाड़ी ने टक्कर मारी तो वहीं उनका एक्सीडेंट हुआ। अब घर जाके सिर्फ एहराम खोलना था, या आप कह लें कि बाल तक कटवा दिए हुए थे, तो फिर उनकी वहीं खड़े खड़े डेथ हो गई थी। तो घर वालों को तो भी इस चीज का यकीन ही नहीं आ रहा था, लेकिन अल्लाह उनको ले गया। तो बिलफर्ज को ये भी करने से पहले मर जाए तो क्या फिर उनकी बाकी चीज़ें पूरी करेंगे? नहीं करेंगे, वो गया अल्लाह के पास। और हदीस में आता है कैसे लोग क़यामत के दिन लब्बाई कहते हुए उठेंगे, तो अल्लाह ताला बहरहाल ईमान वाली मौत दे और साथ जाने वाले साथ ही आए। ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर और आफियत से लेकर आए सबको। फिर इसी तरह से انشاءاللہ تعالی ہم آگے کچھ چیزیں جو کل پڑھیں گے اس کا خاص طور پہ آپ کے طواف اور صفحہ مروہ اور سعی ان ساری چیزوں سے تعلق ہے. اور اس بک میں بھی احرام کے مسائل کے اندر یہ جو چیزیں نا آپ کی برش کر سکتے ہیں, کس کس چیز سے احرام میں ممانعت ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور آپ جتنا اس موضوع پہ خود سن کے پڑھ کے جائیں گے وہاں یاد رہے گا, وہاں وقت پڑھنے پہ یاد ہی نہیں رہتی یہ چیزیں. ٹھیک ہے, تو یہاں سے آپ اس کے بنیادی ٹاپک کو ضرور دیکھتے جائیے. یہ جو حالت احرام میں جائز امور اور ناجائز امور 87 اور پیج اور 97 میں آپ کو دکھاتی ہوں. اس میں آپ کو صرف ہیڈنگز ہیں, میں جیسے ابھی دکھانے کے لیے آپ کو دکھانے لگی ہوں. یہ ٹاپک کتنا اہم ہے کہ آپ احرام کی حالت میں کیا کر سکتے ہیں, سر دھو سکتے ہیں, سر مل سکتے ہیں, غسل کر سکتے ہیں. صرف آپ ہیڈنگ پڑھ لیں, حدیث لمبی نہ پڑھیں. اگر پھر آپ دیکھیے حالت احرام میں آنکھوں کے علاج کے لیے سرما یا کوئی دوائی ڈالنا جائز ہے, شرط یہ کہ اس میں خوشبو نہ ہو. حالت احرام میں علاج کے طور پر جسم کے کسی حصے سے خون نکلوانا اور مرہم پٹی کرنا جائز ہے, یعنی اللہ نہ کرے کوئی وہاں تکلیف ہوتی ہے, بلڈ ٹیسٹ کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حالت احرام میں ایسا تیل اور صابن استعمال کرنا جائز ہے جس میں خوشبو نہ ہو. پھر خوشبودار پھول سونگھ سکتے ہیں, آج جس کو اگر بو آتی ہے تو وہ خوشبو سونگھ سکتا ہے. حالت احرام میں انگوٹھی, پیٹی, اینک اور گھڑی وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے. کھائی اور پی جانے والی ادویات کے ذریعے حالت احرام میں علاج کرنا بھی جائز ہے. سر اور بدن کھجلانا بھی جائز ہے. خیمہ, چھت یا چھتری سے سر پر سایہ کرنا بھی جائز ہے. محرم احرام کی چادریں دھو سکتا ہے, اگر تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. عورت حالت احرام میں زیور استعمال کر سکتی ہے, نیز رنگین کپڑے بھی پہن سکتی ہے. حالت احرام میں بچے یا نوکر کو علم و ادب سکھانے کے لیے سرزنش کرنا جائز ہے. اب کوئی بچہ گیا ہوا ہے اور اگر وہ تنگ کرتا ہے تو آپ اس کو ڈانٹ سکتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ اس کو کہیں کہ میرا کچھ معاملہ بگڑے گا. پھر اسی طرح کے شکار کے بھی کچھ ایشو ہیں, مچھر, مکھی, جھونک, کانٹنے والی چونٹی وغیرہ کو بھی مار سکتے ہیں. بوقت ضرورت اپنا ہتھیار بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں. حج یا عمرہ ادا کرنے والے عالم یا بزرگ کی رفاقت حاصل کرنے کے لیے احرام باندھتے وقت اگر یہ نیت کی جائے کہ جو احرام فلاں کا ہے وہی میرا ہے تو یہ بھی جائز ہے. اب یہ دیکھیں انشاءاللہ جتنے یہ مسائل آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, میں نے تو اپنا ایک حساب رکھا ہوتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ پوری قرآن کی دعائیں پڑھنی ہے, پورا 55 منٹ سے ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے. یقین کریں سب سے زیادہ شرح صدر مجھے قرآن کی دعائیں پڑھ کے ہوتا ہے. ایک تو قرآن اور دوسری دعائیں, دونوں میں قرآن پڑھنے کا بھی اجر ہے, دعائیں بھی ہیں. وہ چھوٹی سی بک ہے, آپ ان سب کے لیے لے کے آئیے. اور اس میں یہ کہ آپ ترتیب سے پڑھتے جائیں گے, سورۃ فاتحہ سے لے کر 30ویں بارے تک ہر دعا ترتیب کے ساتھ آتی ہے. تو وہ تو اس میں تو کسی کو کوئی شبہ ہی نہیں ہے نا کوئی کون سی دعا ہے اور کون سی نہیں, کیونکہ وہ تو قرآن کی دعائیں ہیں. چلے جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت سے رکھے اور خیر سے لائے. اپنے اور بھی ساتھیوں کو آپ ان چیزوں سے فائدہ دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ یہ تو ہر ایک کے کام کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.